तिजोरिनस महाराज की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा श्री चेतन चरितामृत और ये मध्य लीला भाग दो और अध्याय का नाम है श्री चेतन महाप्रभु की तीर्थ यात्राएं और आज हमारा पैर है 281। तो मेरे पीछे दो रहिएगा, पहले शब्दार्थ कोल्हापुरे कोल्हापुर लक्ष्मी लक्ष्मी देखी देखकर देखे उन्होंने दर्शन किया क्षीर भगवती मंदिर लांग गणेश मूर्ति देखे न उन्होंने देखा चोर पार्वती देवी जिसे चोर कहते हैं। पैर का उच्चारण करेंगे, कोल्हापुर लक्ष्मी देखी देखे न क्षीर भगवती लांग गण देखी देखे न चोर पार्वती कोल्हापुर लक्ष्मी देखी देखे क्षीर भगवती लांग गणेश देखी देखें चोर पार्वती कोल्हापुर लक्ष्मी देखी देखें क्षीर भगवती लांग गणेश देखी देखें चोर पार्वती आप लोग उच्चारण कीजिए और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की मेरे पीछे दोहराइए। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु कोल्हापुर नामक नगर गए जहां उन्होंने क्षीर भगवती के मंदिर में लक्ष्मी जी को और चोर पार्वती नामक अन्य मंदिर में लांग गणेश के दर्शन किए। तात्पर्य श्रवण कीजिए, कोल्हापुर पहले बंबई प्रदेश कहलाने वाला और वर्तमान महाराष्ट्र प्रदेश का एक नगर है। पहले कोल्हापुर एक देसी रियासत था। यह उत्तर में सांतारा जिला से पूर्व तथा दक्षिण में बेलगाम से तथा पश्चिम में रत्नागिरी जिले से घिरा है। इस स्थान पर उर्णा नामक नदी है। बंबई गजट से पता चलता है कि यहां लगभग 250 मंदिर थे। सोचिए भारत की यह स्थिति थी उससे पहले कि 500 साल पहले बंबई में भी 250 मंदिर थे जिनमें से 6 अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। इनके नाम है अंबाबाई या महालक्ष्मी मंदिर, विठोबा मंदिर, टेम्बलाई मंदिर, महाकाली मंदिर, फिरांग या प्रत्यांगिरा मंदिर तथा यालम्मा मंदिर। ये कोल्हापुर के निकट बंबई प्रदेश के आसपास इतने मंदिर थे उस समय पर। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त होता है। पहले स्तुति पाठ करते हैं। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत आज के इस कार्यक्रम में जिसमें कि हम श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं इस मंदिर में साप्ताहिक में एक दिन है आपका, हाँ सोमवार को। तो ये बहुत ही विशेष ग्रंथ है हमारे खासकर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंदर। ये ग्रंथ को सबसे ऊंचा माना गया है। इसको PhD डिग्री बताया जाता है कि ये भगवद गीता श्रीमद् भागवतम और उसके बाद इसका अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए ताकि हम इसको समझ पाने की कुछ योग्यता प्राप्त कर पाए। तो जब भी श्री चैतन्य चरितामृत पर चर्चा आती है तो हमें याद करना चाहिए कि जब श्रील प्रभुपाद जा रहे थे भारत से अमेरिका, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं अपनी डायरी में कि इस समय वृंदावन का जो विरह है वो सता रहा है, लेकिन एक ही आशा है और एक ही मेरा संग है जो कि मेरे हाथ में समय श्री चैतन्य चरितामृत का मैं रस पान करता हुआ इस पानी के जहाज से जा रहा हूं। तो ये वो ग्रंथ है जो श्रील प्रभुपाद जी को बहुत ही प्रिय था, बहुत पसंद था। प्रभुपाद जी हाथ में लेकर गए इस ग्रंथ को और साथ साथ उसको अध्ययन कर रहे थे, रसपान कर रहे थे इस महाग्रंथ का। तो इस समय आपके यहाँ जो चर्चा चल रही है वो चर्चा चल रही है श्री चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्राएं। तो इस समय श्री चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है, मूड है, वो बहुत ही आनंद में है। दोनों हाथ उठाकर के इसमें पीछे पैर आया होगा, आपने पढ़ा होगा, कृष्णा 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 हे राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामाम। अपने दोनों हाथ उठा करके महाप्रभु जिस तरह से नृत्य करते हुए जाते हैं, उनके पीछे पीछे उनके अनुयायी चल रहे हैं और अनेक तीर्थ यात्राएं की महाप्रभु ने। इसमें श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि विद्यानगर से जब वो चले तो ये यात्रा जो है यूनिक है, ये कोई सामान्य यात्रा नहीं थी महाप्रभु की, अद्वितीय यात्रा थी और कई हजार तीर्थों में इन्होंने दर्शन किया, कई जगह स्नान भी किया, कई हजार तीर्थों में गए। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, हालांकि इस अध्याय में जो पैर संख्या वो 365 है, 365 दिन होते ना एक साल में, तो अगर इस चैप्टर को पढ़े एक एक तो पूरा साल लग जाएगा इस चैप्टर को पढ़ने में रसास्वादन के साथ। तो 365 प्यार लिख रहे हैं और जब 358वां प्यार आएगा तो वो कहते हैं मैंने तो बहुत संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में ये तीर्थ यात्राओं की चर्चा की है। कई हजार तीर्थों में महाप्रभु गए अपने फॉलोवर्स के साथ में, तो इसका मतलब है कितने ज्यादा तीर्थों में गए होंगे। वो लिखते हैं कि अगर मैं पूरा वर्णन करूंगा तो पता नहीं कितने सारे ग्रंथ बन जाएंगे सिर्फ तीर्थ यात्रा के चर्चा में ही। तो लेकिन उन्होंने हजारों वासियों की काया पलट कर दी अपनी तीर्थ यात्रा से। जो भौतिक दवादी व्यक्ति होते हैं उनकी तीर्थ यात्रा होती है कि चलो अब शिमला में थोड़ी वर्षा आ गई है या कुछ बर्फ गिर रही है, जो जाएंगे चलो वहां दर्शन करेंगे, देखेंगे पहाड़ कितना सुंदर है, बर्फ कितनी सुंदर है, गर्मी आ गई चलिए कुल्लू मनाली चलते हैं, है ना। लेकिन जो भक्त होते हैं उनको जब भी रेस्ट मिलता है तो थोड़ा फ्री टाइम मिलता है तो वो प्लान करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब भी कलकत्ता रेलवे स्टेशन पर जाते थे तो क्या देखते थे कि जगन्नाथपुरी कौन सी ट्रेन जाती है, कितने बजे जाती है, कभी गए नहीं जब बचपन में थे, लेकिन हमेशा वहां पर इंडेक्स में यही देखते थे। और जब उनके साथी कहते थे कॉलेज की छुट्टियां हो गई अब है चलो अब कहीं घूमने चलेंगे, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे अभयचरण डे के रूप में कि नहीं नहीं उन स्थानों में मुझे नहीं जाना है, मुझे जगन्नाथपुरी जाना है। कब मेरा वो सपना पूरा होगा जब मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, अपने कॉलेज के दोस्तों को बोलते थे। तो जो सतोगुण की अवस्था में होते हैं, शुद्ध चेतना में होते हैं, उनकी चेतना उसी डायरेक्शन में जाती है। जो रजोगुण में होते हैं, जो तमोगुण में होते हैं, उनकी चेतना उधर ही जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इस्कॉन में आकर भक्त बन गए हैं तो अब हम आउटडेटेड हो गए हैं, नहीं, हमारी चेतना शुद्ध सतोगुण की तरफ अग्रसर है। हम भक्तों का संग करके सारे भक्तियों के नियमों का पालन करके अब हमें वो अच्छा नहीं लगता, ऐसा दृश्य कि हम कई भौतिक स्थानों में जाएं, बल्कि हमारा स्वादन होता है, पता चलता है वृंदावन ट्रिप जा रहा है, जगन्नाथपुरी ट्रिप जा रहा है, तो भक्तों को आनंद मिलता है, वो हरि बोल। तो महाप्रभु इस प्रकार से गए। तो ये तीर्थ यात्रा का जब चैप्टर समाप्त होगा तो इसका महत्व सुनाया जाएगा, तो मैंने सोचा आज ही अगर बीच में सुना दिया जाए तो और भी टेस्ट बढ़ जाएगा आपके और जो पैर आएंगे। देखिए क्या लिखते हैं, प्रभु तीर्थ यात्रा कथा सुने जे जन, जो भी जन इस महाप्रभु की तीर्थ यात्रा कथा को सुनते हैं, चेतन चरण पाए गाढ़ प्रेम धन। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का वो जो गाढ़ा प्रेम है, पतला वाला भी नहीं, गाढ़ा जो प्रेम है वो उन्हें प्राप्त होगा। हरि बोल। तो आप भक्तों को ये अवसर मिल रहा है, महाप्रभु जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। चेतन चरित श्रद्धाए सुने जय जन, और जो भी जन श्री चैतन्य चरित्र को श्रद्धा के साथ सुनेगा, यतेक विचारे तत पाए प्रेम धन। जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनता है, खाली वो भ्रमण कर रहे हैं, सोचिए तीर्थ यात्रा में, अगर एक भौतिकतावादी व्यक्ति तीर्थ कहीं जाए मान लीजिएगा किसी, तो उसका क्या है, वो आकर बताएगा मैं वहां गया था, शिमला गया, बड़ी बर्फ देखी, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। लेकिन महाप्रभु चूंकि भगवान के जो भी कार्य होते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं, वो यात्रा कर रहे हैं, वो भी क्या है, जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनता है और व्याख्या करके उनका अध्ययन करता है, वह भगवत प्रेम रूपी धन को प्राप्त करता है। ये चैप्टर के अंत में आएंगे ये प्रयास, 360, 361, 362, 365 ऐसे। तो इसका मतलब है कि ये जो चर्चा चल रही है, हमें बहुत श्रद्धा के साथ मन लगा करके श्रवण करना चाहिए। तो महाप्रभु खैर आज पहुंचे हैं कहां पर, कोल्हापुर, जैसे आपने कोल्हापुरी चप्पल बड़ी प्रसिद्ध है, बताते हैं वहां की ना, कोल्हापुरी चप्पल पहनी है भाई। तो विद्यानगर से चल करके महाप्रभु कहां कहां गए, कुछ स्थानों की चर्चा करते हैं। रंग क्षेत्र से वो वेंकट भट्ट के यहां गए थे, आपने सुना होगा, चातुर्मास वर्षा, हालांकि अभी वर्षा के दिन नहीं है, लेकिन उस समय वर्षा के दिन आ गए थे, लेकिन आज वर्षा आई तो मैंने सोचा कि चातुर्मास में महाप्रभु वेंकट भट्ट के रुक गए, घर में रुक गए, और पूरे परिवार की को कृष्ण भक्त में कन्वर्ट कर दिया। वो नारायण के भक्त थे। रामेश्वरम गए, फिर रामदास विप्र के घर गए, तो कितनी सुंदर कथा आई थी कि वो भोजन नहीं करता था, और महाप्रभु ने सोचा अरे ये ब्राह्मण भोजन नहीं करता है, तो महाप्रभु वहां से लेकर आए कूर्म पुराण और उनको सुनाया, तो चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा रामदास विप्र, कहने लगा आप ही रामचंद्र जी हो, मुझे आपका दर्शन करके ऐसा अनुभव हो रहा है। और फिर उसने भोजन किया और महाप्रभु को भी उन्होंने ऑफर किया। उसके बाद महाप्रभु परशुराम से मिले थे महेंद्र पर्वत पर, फिर काला कृष्णदास उनका एक फॉलोवर था, वो भट्टधारियों के साथ में चला गया था, उन्होंने अपने कुछ माया जाल से उसको पकड़ लिया था, वो सुबह सुबह उठा और सीधा भागा उनकी तरफ, महाप्रभु भी वहां गए। और इस लीला में बड़ा आश्चर्य होता है कि जब महाप्रभु ने कहा भाई मेरा एक मेरे साथ में एक संगी था उसको लौटा दो कृष्णदास, तो वो सारे अपने अपने हथियार लेकर आए मारने के लिए आए, महाप्रभु के ऊपर आक्रमण कर दिया, तो महाप्रभु ने उनको सिर्फ प्रेम से देखा। तो क्या हुआ था, आपने सुनी होगी लीला, वो जितने भी हथियार लेकर आए थे वो सारे हथियार उनके हाथों से उड़े और उनके ही पेट में घुस गए और सब मर गए, और बाकी जितने बच गए वो भाग गए। अरे ये क्या हुआ, हमारे हथियार हमारे पेट में घुस गए, और महाप्रभु हाथ जोड़ करके चुपचाप खड़े हैं। ये देखिए भगवान की लीला। और फिर कृष्णदास को बाहों से पकड़ के घसीट के लाए, कहां चले गए थे, तो चलो मेरे साथ। तो महाप्रभु इस प्रकार से, फिर ब्रह्म संहिता का वो पांचवा अध्याय जिसका हम स्वादन करते हैं, पयस्विनी नदी के तट पर गए, फिर कृष्ण कर्णामृत नामक, ये दो ग्रंथ महाप्रभु ने ही हमें दिए, कृष्ण कर्णामृत बिलव मंगल ठाकुर का और ये ब्रह्म संहिता, ये महाप्रभु ही खोज कर लेकर आए, नहीं तो ये उपलब्ध नहीं थे उससे पहले, लेकिन महाप्रभु ने दक्षिण भारत के स्थानों से प्राप्त किया कृष्ण वेणवा नदी के तट से। फिर महाप्रभु आगे बढ़े, सात वृक्षों का उद्धार किया उन्होंने, वो सात वृक्ष जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने छुप कर मारा था, किसको, बाली को मारा था ना, इन्हीं वृक्षों, वो पेड़ अभी भी थे, महाप्रभु वहां गए उन पेड़ों का आलिंगन किया, एक एक आलिंगन करते जाते थे वो पेड़ गोलोक धाम वापस पहुंच जाता था, वैकुंठ चला जाता था, सातों ताड़ वृक्षों का उद्धार किया। और फिर पांडरपुर में जब महाप्रभु पहुंचे तो वहां पर माधवेंद्रपुरी के एक शिष्य थे रंगपुरी, ये बहुत विशेष स्थान था, और इसी कारण से महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा की थी। जब उन्होंने सुना कि माधवेंद्रपुरी का एक शिष्य यहां रहता है रंगपुरी, तो रंगपुरी का नाम सुनकर के महाप्रभु गए, वहां पर दंडवत प्रणाम किया उनको, रंगपुरी महाराज ने दिखा रहे रहे आप सन्यासी महाराज ये क्या कर रहे हैं, मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं, आप तो बहुत दिव्य लगते हैं। और फिर महाप्रभु ने पूछा आइए आइए, पहले तो उन्होंने बुलाया प्रसाद के लिए, उनके घर में भोजन ग्रहण किया महाप्रभु ने, और फिर जब भोजन ले रहे थे तो चार पांच दिन वहां रुके और कृष्ण कथा का स्वादन किया दोनों ने मिलकर। फिर बाद बाद में ही रंगप्रिय महाराज ने पूछ लिया कि आप कहां के रहने वाले हैं, आपका जन्म कहां हुआ था, तो महाप्रभु ने बताया मेरा जन्म तो नवदीप में हुआ था। तो रंगपुरी महाराज बोले, मैं एक बार माधवेंद्रपुरी के साथ गया था नवद्वीप में, और वहां पर एक ब्राह्मण रहता है जगन्नाथ मिश्र, और उनकी पत्नी रहती है सची देवी, और मैंने भोजन दोपहर का भोजन लिया था उनके घर में, और बड़ा स्वादन उन्होंने केले के पत्ते से बड़ी सुंदर खुशबूदार कढ़ी ऑफर की थी मुझे, आज भी याद है। महाप्रभु बोले, महाराज वो मेरे ही माता पिता हैं, बहुत आलिंगन किया दोनों ने, और मेरा बड़ा भाई था। तो रंगपुरी महाराज ने बताया कि वास्तव में जो शंकरानंद ने, वो जो आपका तुम्हारा बड़ा भाई था, वो यही पांडरपुर में उसने सर्वसिद्धि प्राप्त की है, और वो चला जा चुका है अपने बैक टू गॉड है। तो महाप्रभु इस उद्देश्य से ही गए थे ये देखने के लिए कहां पर। तो इस तरह से महाप्रभु ने अनेक यात्राएं की हैं। इस जय श्री राधा राधिका रमण देव भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्र बलदेव प्रभु सुदर्शन देव भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम देव भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने अनेक यात्राएं की और आज पहुंचे हैं कोल्हापुर के अंदर। और यहाँ पर जैसा आपने देखा चोर पार्वती का मंदिर और गणेश जी के मंदिर में गए, तो इससे हमें ये जो आज महाप्रभु गए हैं, अक्सर हमने देखा है, मैं भी जब राधा मदन मोहन मंदिर गया था, कहाँ पर है ये मंदिर, दूर में करौली, यस करौली में जब गए तो वहां पर एक केला देवी का मंदिर है, तो जिन भक्तों के साथ में हम गए तो उन्होंने कहा, वहां पर बड़ी भीड़ थी केला देवी के मंदिर में, तो हमने कहा भी यहाँ भी मंदिर है प्रभु जी, यहाँ भी चलो। तो जो हमारे साथ में भक्त थे तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, वैष्णव लोग सिर्फ इधर ही जाते हैं, राधा मदन मोहन मंदिर गए, हम लोग उधर नहीं जाएंगे। तो कभी कभी जो न्यू फाइव डिवोटीज होते हैं वो सोचते हैं कि हम तो हरे कृष्णा इस्कॉन से हैं, अगर कोई देवी देवता का मंदिर है तो फिर हम लोग थोड़ा सा उसको नेग्लेक्ट करते हैं। देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे नेता हैं, और वो हमें सिखा रहे हैं कि जब वो इस मंदिर में गए हैं, गणेश जी के मंदिर में गए हैं, सोचिए, और पार्वती के मंदिर में गए हैं, तो वहां जाकर जितने भी मार्ग में इतने सारे मंदिरों में गए हैं महाप्रभु, बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर मिलते हैं, वहां पर महाप्रभु जाकर के दंड प्रणाम करते हैं और हरि बोल बोल के नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो ये दिखाने के लिए कि जितने भी देवी देवता हैं वो सब क्या हैं, वो सब मेरे ही भक्त हैं, इसलिए हमें उनको द्वेष की भावना से, ये है कि भावना से नहीं देखना है, हमें उनको सम्मान देना है। जैसे वैष्णवों की परिभाषा दी जाती है, जैसे एक पतिव्रता स्त्री सारे पुरुषों का सम्मान करती है लेकिन पूजा सिर्फ अपने पति की करती है, वैष्णव भी वैसे ही होते हैं। वैष्णव लोग समस्त देवी देवताओं को सम्मान देते हैं, वांछा कल्पद्रुभश्च कृपा सिंधु भयवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और जब भगवान श्री कृष्ण अपना हृदय जो है वो भगवान के चरणों में देते हैं, पूजा जो करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण की करते हैं, लेकिन सम्मान सबका करते हैं, ऐसा नहीं कि ये किसी ऐसा देवी देवता का मंदिर है तो फिर हम वहां पर ऐसा नहीं करेंगे, नहीं, हमें पूरा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनको जो सेवाएं मिली हैं वो भगवान की तरफ से मिली हैं। कि आप ये पानी का डिपार्टमेंट आप देखिए, ये बिजली का डिपार्टमेंट आप देखिए, ये हवा का ऑक्सीजन का डिपार्टमेंट आप देखिए, तो ये भगवान ने ही उनको ये सेवाएं दी हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। गोपियों ने भी जब कात्यायनी देवी की पूजा की थी तो उन्होंने लेकिन मांगा क्या था, हम भी जब देवी देवताओं के मंदिर में जाए तो प्रणाम करके मांग सकते हैं सम्मान के साथ कि हमें श्री कृष्ण चरणों में आसक्ति का आशीर्वाद दीजिए, तो इसमें क्या खराबी है। तो उन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में ही मांगा। खराबी किसमें है, जब हम देवी देवताओं के मंदिर में परचून की लिस्ट लेकर जाते हैं, पूरी दुकान में जाते हैं परचून की दुकान में, आटा चावल ये सब हल्दी मिर्च जीरा सब दे दो, वो खराबी है, क्योंकि देवी देवता लोग ये नहीं सोचते कि भाई इनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए ये वस्तु, लेकिन भगवान जो है हमारे भले के लिए जानते हैं कि ये चीज ये वस्तु इसके लिए नुकसान करेगी, इसलिए भगवान नहीं देंगे, लेकिन देवी देवता दे देते हैं। जैसे आपने देखा भस्म असुर, कितने सारे असुर ऐसे हुए उन्होंने जो मांगा तथा अस्तु, लेकिन भगवान से मांगो ना कि आपके जिसके भी सिर में हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, भगवान कभी नहीं देंगे, इसलिए वो जाते ही नहीं कि वहां जाना ठीक नहीं, वो देगा ही नहीं। इसलिए महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ये दिखा रहे हैं कि हमें किसी भी देवता के मंदिर में जाकर के द्वेष भाव नहीं रखना है। फिर इसके आगे चलते हैं, गणेश जी का महात्म देखते हैं, कि गणेश जी कौन है। वास्तव में बहुत ही शुद्ध वैष्णव है, और गणेश जी जैसे सदाशिव वैकुंठ है, ऐसे गणेश जी का भी वैकुंठ है। ये जो 33 देवताओं का डिपार्टमेंट है, जो 33 देवता लोग हैं, ये वास्तव में भगवान के ही एक्सपेंशन है। इनकी जो विष्णु तत्व है, ये इनका अलग से वैकुंठ भी है। जैसे गणेश जी के रूप में भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं, कहां पर? वैकुंठ में। उनके एक्सपेंशन आगे गणेश जी हैं। जैसे शिव जी इस भौतिक संसार में भी हैं और वैकुंठ में भी हैं। वहां पर किस नाम से हैं? सदाशिव। सदाशिव के नाम से हैं, और इस संसार में विश्वनाथ या महादेव के नाम से जाने जाते हैं। सेम उसी प्रकार से गणेश जी का स्थिति है, तो बहुत महत्व है। तो मैंने सोचा कि आज गणेश जी और पार्वती के विषय में ही ज्यादा चर्चा करते हैं, अगर समय ने मुझे मौका दिया पूरा करने का, क्योंकि समय बहुत तेजी के साथ जाता है, शायद पंजाबी पा की घड़ी बहुत तेजी से चलती है और मंदिरों के मुकाबले। तो इसकी चर्चा ऐसे आती है कि शुरुआत यहां से होती है कि 12वें स्कंद में कथा आती है कि ब्रह्मा जी और शिव जी जाते हैं और भगवान से जाकर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस संसार में अब कलयुग आने वाला है। 12वें स्कंद में आती है ये, और जब कलयुग आएगा तो लोगों की जो बुद्धि है वो श्रुति धर्म ना रह करके डल हो जाएगी। तो कृपा करके आप कुछ ऐसा कीजिए, कुछ लिपिबद्ध करने का कुछ ऐसा प्रबंध कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था तथास्तु, और उन्होंने फिर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव के रूप में जन्म लिया, जैसा आप जानते हैं पाराशर मुनि और सत्यवती के गर्भ से। तो जब भगवान आए व्यासदेव के रूप में, तो देखिए उनके पुत्र थे बहुत इंटेलिजेंट सुखदेव गोस्वामी जो भागवत सुनाते हैं, उनके शिष्य थे वैशंपायन मुनि जो कि लिपिबद्ध कर सकते थे, लेकिन व्यासदेव जी ने किसको चुना? जितने भी पुराणों को लिपिबद्ध करने के लिए उन्होंने गणेश जी को चुना। गणेश जी से प्रार्थना की कि आप आइए, तो जानते दोनों में क्या वार्ता हुई? आपस में दोनों में वार्ता हुई। गणेश जी कहते हैं कि माय पेन शुड नॉट बी स्टॉप विदाउट ए मोमेंट, मैं लिख तो दूंगा लेकिन मेरी राइटिंग लिखने की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट है, अगर मुझसे लिखवाना है तो इतनी जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा कि मैं जल्दी जल्दी लिख पाऊं, धीरे लिखने की मुझे आदत नहीं है। तो व्यासदेव जी ने कहा कि एक मेरी भी शर्त है कि जो भी आप लिखोगे प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखोगे, यानी कि आपको कुछ पता ही नहीं आप क्या लिख रहे हो, आप समझोगे फिर लिखोगे, तो उसमें थोड़ा समय मिल जाएगा ना। व्यासदेव जी चालाक थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये सही बात है, इससे मेरा भी अध्ययन हो जाएगा। अगर मैं जो लिख रहा हूं, कभी कभी होता है ना हमारे साथ, हम लिखते हैं हमें पता नहीं होता क्या लिखा, मन की प्रेजेंस वही होनी चाहिए जहां लिख रहे हैं। तो गणेश जी ने भी माना कि ठीक है हाँ मैं लिखूंगा। और उसके बाद देखिए यहां पर हम विचार कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं 7.20 में, काम हस्त ज्ञान प्रबदंती अन्य देवता, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है वो अन्य अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। तो व्यासदेव जी ने पहले बोल दिया जो लिखोगे वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखोगे। तो 7.20 से 7.23 तक के जो गीता के श्लोक हैं, या 9.20 से 24 तक जो गीता के श्लोक हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि कृष्ण ही परम भगवान है। अनन्या चिंतयन्तो मां, वो भी उसी में आता है। तो और देवताओं के लिए भी इसमें कई श्लोक आते हैं अविधि पूर्वकम, कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो अविधि पूर्वक है। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बोल दी, लेकिन फिर भी गणेश जी लिखते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि देवता लोग सब जानते हैं, ये कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल नहीं है कि नहीं 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 कृष्ण ही भगवान है बाकी हम किसी की पूजा नहीं करेंगे। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ इन्होंने लिखा। फिर चर्चा आती कि गणेश जी वास्तव में गणेश जी का जो आध्यात्मिक रूप है वो वैकुंठ जगत में वो कैसा है, कैसे वो प्रकट हुए संसार में। देखिए ये चर्चा आती है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक गणेश खंड नामक अध्याय है जहां पर ये डिटेल में सुनाया गया है कि गणेश जी आध्यात्मिक रूप में कैसे प्रकट होते हैं। वहां बताया गया कि जब कार्तिकेय का जन्म हुआ पार्वती और शिव जी से, तो पार्वती जी ने एक इच्छा की, शिव जी से कहा कि मुझे एक और पुत्र चाहिए। तो शिव जी जानते थे, शिव जी ने बहुत स्पष्ट है ये कथा, बहुत ही सुंदर कथा है, खासकर हम हरे कृष्णा के भक्तों के लिए, इसलिए मैंने सोचा ये हमें जरूर सुननी चाहिए आज कथा। तो शिवजी कहते हैं वहां पर विष्णु भी उपस्थित हैं और भी देवी देव सब उपस्थित हैं। तो शिवजी कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें श्री कृष्ण भगवान की पूजा करनी होगी और एक व्रत करना होगा उनका। उस व्रत का नाम उन्होंने बताया पुण्यक व्रत है। इसके एक साल तक इसकी उपासना की जाती है। तो वो पूछते हैं कि इसका क्या तरीका क्या है, कैसे किया जाता है। तो उन्होंने बताया कि कीर्तन किया जाए। देखिए हम लोग कीर्तन करते हैं ना 24 आवर्स कीर्तन किया जाए भगवान श्री कृष्ण का, और उन्हें भोग लगाया जाए और फूल माला उनके विग्रह को अर्पित की जाए रोज 1 वर्ष तक। और जब 1 वर्ष हो जाएगा तब भगवान श्री कृष्ण तुम पर कृपा करेंगे। तो इस प्रकार से पार्वती देवी बहुत प्रसन्न हुई। और यह चर्चा आती है नारद जी ने नारायण भगवान से पूछा है वहां पर कि गणेश जी का सुनाइए उनका क्या महत्व है, किस तरह से गणेश जी प्रकट होते हैं इस रूप में। तो 1 वर्ष तक जब ये चला तो जब व्रत समापन हुआ उद्यापन का दिन था तो शिव जी ने अपने घर में सारे देवी देवताओं को सबको भगवान विष्णु को सबको बुलाया। कहने लगे भाई आज उद्यापन है इस व्रत का और फीस दूंगा मैं सबको। और फीस बड़ा फीस बनाया गया। सारे जितने भी लोग थे वहां पर आए, जितने भी जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी की घटना मिलती है, जब श्रील प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में थे तो वहां पर परमहंस और एक ब्रह्मचारी को ये तिथि है 22 अक्टूबर सन 1976 को 1972 क्षमा कीजिए, प्रभुपाद ने 2 लोगों को संन्यास दिया था राधा दामोदर मंदिर में। तो जब सारा कार्यक्रम समाप्त हो गया तो प्रभुपाद जी ने पूछा क्या तुमने कुछ दिव्य व्यक्तियों का भी दर्शन किया। तो भक्तों ने कहा नहीं महाराज हमने तो किसी को देखा नहीं, कोई दूसरे प्लेनेट से कोई आया हो। तो प्रभुपाद जी ने कहा अरे आज का जो उत्सव था बहुत सुंदर था। आज के उत्सव में रूप गोस्वामी बैठे थे पीछे और नारद जी पीछे बैठे थे। इस संन्यास जो ये हुआ परमहंस महाराज बने और ये एक ब्रह्मचारी का जो संन्यास हुआ वहां पर नाम लिखा है खाली एक ब्रह्मचारी का। तो आज रूप गोस्वामी स्वयं साक्षात उपस्थित है यहाँ पर। तो इस प्रकार से जिस दिन उद्यापन हुआ सारे देवी देवता भगवान विष्णु स्वयं सब वहां उपस्थित थे और बहुत ही सुंदर फीस्ट बहुत ही सुंदर प्रबंध किया। और शिव जी फिर नारायण भगवान से देखिए क्या पूछते हैं। वो पूछते हैं कि मैंने आप सब अतिथियों को कंफर्टेबल अरेंजमेंट्स दिया कि नहीं दिया। आपको जो प्रसाद मिला भगवान का वो सब आपको प्रिय लगा कि नहीं लगा, और हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, ये शिव जी पूछ रहे हैं भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु देखिए क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सुंदर यहां पर चर्चा आई है। भगवान विष्णु कहते हैं हे पार्वती के स्वामी, कोई भी कार्य या कोई भी उत्सव भगवान के प्रति उनकी प्रसन्नता के लिए किया जाता है वह भक्ति कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो भी कार्य किया जाता है, उनका जो भी उत्सव मनाया जाता है वह भक्ति कहलाता है। और यह भक्ति जीवात्मा के हृदय में कहां से आती है और कहां से विकसित होती है, केवल उनके भक्तों के माध्यम से। ये शुद्ध भक्ति बाहर से नहीं मिलती, किसी मॉल में नहीं मिलती, ये मिलती है कहां से, उनके भक्तों के आशीर्वाद से। तो आपने वही उचित कर्म किया है। और प्रलय के बाद भी आगे देखिए बोल रहे हैं, और प्रलय के बाद भी जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो मैं जानता हूं तुम प्रलय करते हो तो सब पूरी सृष्टि को नष्ट कर देते हो, लेकिन हे शिव जी जब तुम प्रलय करते हो तो मेरे भक्तों का तुम विनाश नहीं कर सकते, भगवान विष्णु बोल रहे हैं। और चूंकि मेरे भक्तों पर, मेरे शरणागत भक्तों पर, ये शब्द का प्रयोग है, बाकी जा सकते हैं लेकिन विष्णु भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे शरणागत रहते हैं प्रलय के समय में उन पर मेरी कृपा रहती है और उनका तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाते हो। इसलिए सारी सृष्टि का नाश हो सकता है लेकिन मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। कौन ते प्रति जाने नमे भक्त प्रणश्यति, इसी का ट्रांसलेशन बोल रहे हैं भगवान विष्णु शिव जी के समक्ष। इसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं इस उत्सव के कारण, चूंकि तुमने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया है तो भगवान श्री कृष्ण का पार्शल रिप्रेजेंटेटिव पार्वती के गर्भ से जन्म लेगा, ये भगवान विष्णु बोल रहे हैं। और जिनके अनेक नाम होंगे, जैसे उन्होंने कई नाम बताए, गणेश, गणेश का मतलब है मास्टर ऑफ ऑल देवांगनास, विघ्न घन यानी जितने भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं उनको वो नष्ट करने वाले। और जब पूजा की जाएगी किसी भी पवित्र कार्य में तो गणेश जी की पूजा की जाएगी, और उनका नाम गजानन भी होगा। जब गजानन बोला तो पार्वती देवी कुछ घबरा गई कि बेटा कैसा होगा गजानन, आनंद का मतलब मुखमंडल और गज का मतलब हाथी। तो पार्वती ये सुनकर के सब बैठे थे, भगवान विष्णु सुना रहे हैं, तो थोड़ी घबरा गई कि ये बेटा कैसा होगा गजानन, हाथी के मुख वाला। तो भगवान, इतने में जब भगवान विष्णु ये कथा सुना रहे हैं, इतने में ही भगवान श्री कृष्ण साक्षात वहां प्रकट होते हैं। देखिए विष्णु बैठे हैं वहां पर और साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण उस समय ऐसा अनुभव हुआ कि करोड़ों करोड़ों सूर्य निकल आए हैं आसमान में, सबकी आंखें चुंदी आ गई, और भगवान श्री कृष्ण नित नव युवक की भांति, नव यौवन उनका जो बदन है, और बहुत ही मनोहर मुरली उन्होंने धारण की है, वैजंती माला से सजे हैं, मोर पंख उन्होंने लगाया हुआ है, और पीतांबर पहने हैं, और होठों से थोड़ी थोड़ी मुस्कान छलकाते हुए देख रहे हैं वहां जो चर्चा चल रही थी, और बहुत प्रसन्न हुए भगवान पार्वती देवी से। इस प्रकार से जब भगवान आए तो भगवान ने तथास्तु कहा मुस्कराते हुए और वहां से चले गए। कुछ देर बाद हुआ ये कि जब सारे मेहमान आए थे, सबको शिवजी और पार्वती ने विदा किया, और फिर शिवजी पार्वती अपने शयन कक्ष में जाकर के विश्राम कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद एक ब्राह्मण वहां आया, उसने दरवाजा नॉक किया, जल्दी जल्दी दरवाजा जल्दी खोलो, दरवाजा जल्दी खोलो। तो शिवजी पार्वती बाहर आए, क्या हुआ, क्या चाहिए आपको? तो वो ब्राह्मण कहता है कि मुझे जो आज आपने फीस्ट किया है ना, मुझे भी उसका थोड़ा अगर मिल जाता तो मैं भी वो फीस लेना चाहता हूं, महाप्रसाद या कुछ भी मिल जाए थोड़ा। तो शिवजी पार्वती अभी शयन कक्ष में थे और संतान उत्पत्ति के लिए वहां गए थे, लेकिन शिवजी कहते हैं कोई ब्राह्मण लगता है। तो दोनों शिव पार्वती दौड़े दौड़े गए और पहले रसोई में जहां उन्होंने बनाया था वो फीस वहां गए, वहां से महाप्रसाद लिया और दरवाजे में देखने आए तो वो ब्राह्मण अप्रकट हो गया, अदृश्य हो गया। बड़ा शोक करने लगी पार्वती देवी के मेरे दरबार, मेरे दरवाजे पे आज एक ब्राह्मण आया था, एक भक्त आया था और उसको मैं भोजन नहीं करा पाई, तो बड़ा शोक। इतने में ही जब वो अंदर वापस आ रहे थे, एक दिव्य वाणी आई की आवाज आई, बड़ी बादलों की गरजती भी जैसे आवाज थी। उसने कहा, हे पार्वती तुम शोक मत करो, तुम अंदर जाकर के देखो, तुम्हारा पुत्र वहां पर उपस्थित है। तो पार्वती देवी दौड़ के गई तो वहां एक बहुत ही सुंदर बालक लेटा हुआ था जो अपने पांव को आगे से मार रहा था। पार्वती देवी ने गोद में उठाया बालक को और महादेव को बुलाया, देखिए हमारे घर ये बच्चा प्रकट हो गया है जो कितना दिव्य है। तो सबने उसको देखा और बहुत सुंदर था और गजानन नहीं था, यहां पर यह विशेष बात है, गजानन नहीं था, सुंदर मुख वाला था। और सारे जितने भी देवी देवता थे वो सब आने लगे, किन्नर और जितने भी गंधर्व सब लोग आने लगे, दर्शन करने लगे, फूल बरसाने लगे, इतना सुंदर बालक आपके यहां पे आया है, आशीर्वाद दे रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब सारे देवी देवता आ रहे थे तो वहां से शनि देव भी आ रहे थे। शनि देव ने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, और शिवजी को दंडवत प्रणाम किया, सबको दंडवत प्रणाम किया। लेकिन शनि देव आ कैसे रहे थे, ऐसे नहीं आ रहे थे, नीचे नजर करके ऐसे चल रहे थे, नीचे देखते देखते। और जब वो बालक के कक्ष में पहुंचे तो नीचे नजर किए थे। पार्वती ने कहा कि आप मेरे पुत्र का दर्शन करने आए हो लेकिन आपकी निगाहें तो नीचे, क्या बात है, आप दर्शन कीजिए ना मेरे पुत्र के, कितना सुंदर बालक है मेरा। तो शनिदेव कहते हैं, देखो ऐसा है कि मैं अगर देखूंगा ना आपके बालक को तो इसको नुकसान हो सकता है। तो पार्वती कहती है, ऐसा क्यों? तब देखिए शिव शनिदेव अपनी कथा सुनाते हैं। शनिदेव कहते हैं, पार्वती वास्तव में मैं भगवान श्री कृष्ण का अनन्य सेवक हूं, भगवान श्री कृष्ण के चिंतन के बिना मेरा एक क्षण भी नहीं जाता है, और एक दिन मैं जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन कर रहा था, उनके नाखूनों का चिंतन करना था जो कि चंद्रमा से भी ज्यादा चमकीले हैं, उनका जब मैं चिंतन कर रहा था तो मेरी पत्नी एक दिन सच धज कर मेरे सामने आई और कहने लगी, हे पतिदेव मुझे देखो मैं कैसी लग रही हूं। और उस समय मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों के जो नाखून है उनका रसास्वादन कर रहा था, उनका दर्शन कर रहा था। और उस देवी ने मुझे एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, चार बार कहा, और मैं सुनी नहीं पाया क्योंकि मैं पूरी तरह से एब्जॉर्ब था कहां, श्री कृष्ण के चरणों में। और उस देवी ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया, हे शनिदेव आज के बाद, आज तुमने मुझे संत सवरकर नहीं देखा है, आज के बाद तुम जिसको भी देखोगे उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो जैसे उन्होंने ये श्राप दिया तो मेरी आंख खुली, मैंने कहा हे देवी ये तुमने क्या किया, मैं तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन कर रहा था, तुमने इतना घोर श्राप मुझे क्यों दे दिया। तो वो देवी कहने लगी, मेरी पत्नी कहने लगी कि अब तो मैं श्राप दे चुकी हूं, अब कुछ नहीं हो सकता। तो हे देवी इसलिए मैं आपके बालक को अपनी आंखों से देखूंगा नहीं। पार्वती ने कहा तुम छोड़ो वो सब आउटडेटेड बातें हैं, पुरानी बातें हैं, कुछ नहीं होगा। हम लोग भी कभी कभी बोल देते हैं ना, वो ऐसे लिख दिया होगा किसी ने शास्त्रों में, ऐसा नहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही शनिदेव ने दृष्टि ऊपर की, यहां से उखड़ा गणेश जी का मुख इतना, अपने नाक से लेकर के पूरा धड़ गोलोक वृंदावन चला गया। उस ब्रह्मवैवर्त पुराण गणेश खंड में लिखा है कि उनका जो मुख है सीधा भगवान श्री कृष्ण की गोलोक चला गया। अब जैसे ही डेड हो गया बच्चा, जैसे ही पार्वती ने देखा घबरा गई, रोने लगी, शिवजी को बुलाया, सबको बुलाया, सब रोने लगे, क्रंदन करने लगे, ये क्या हुआ। तो शनिदेव कहने लगे मैंने तो पहले ही कहा था, मना किया था, आपने माना नहीं, इसमें मेरी क्या गलती है। तो वहां भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और तुरंत वो जाते हैं पुष्पभद्रा नदी के तट, वहां पर एक हस्ती यानी एक हाथी सहन कर रहा था, उनकी जो छोटा बच्चा भी साथ में सहन कर रहा था, उसका अपने सुदर्शन चक्र से कट करके लेकर आते हैं कैलाश पर्वत पर और वापस उनको लगा कर दे हैं उस मुखमंडल पर, और कहा कि अब आपका ये जो पुत्र है जिसका मैंने बताया था कि इसका नाम गजानन होगा, आज से ये गजानन के नाम से भी जाना जाएगा, ये पहले से व्यवस्थित था, हे पार्वती तुम शोक मत करो। तो इस प्रकार से उनको ये दोबारा से जीवन दान दिया। और फिर उन्होंने बहुत बड़े हुए और आगे जाकर के अपना कार्य संभाला। तो गजानन का अर्थ यही है, गजानन का मतलब है जिसका मुखमंडल गणेश जैसा, हाथी के जैसा है। तो ब्रह्मा जी के आदेश से ही फिर व्यासदेव जी ने गणेश जी को चुना था। अगर आप कभी बद्रीनाथ, आप में से बद्रीनाथ कितने लोग गए हैं, आप गए होंगे तो आपने देखा होगा गणेश गुफा है और उधर व्यासदेव की गुफा जी है, और दोनों बैठ करके वो स्थान आज भी उपस्थित है। लकीली देखिए कि जहां पर जितने भी पुराण हैं उनको लिपिबद्ध किया। तो गणेश जी की कृपा से, गणेश जी के आशीर्वाद से हमने ये सब पढ़ा, क्योंकि उन्होंने इसको रिटर्न फॉर्म में दिया है। उसके बाद पार्वती का मंदिर भी इसमें बताया, चोर पार्वती। पार्वती के विषय में मैंने एक बार यहां पर सुनाया था कि जब पृथ्वी देवी पर भार आया था तो पृथ्वी देवी गाय का रूप बनाकर गई थी ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी गए थे विष्णु के पास। गर्ग संहिता में थोड़ा सा अलग बताया गया है, भागवतम में तो बताया गया कि ब्रह्मा गए ब्रह्मा जी और श्वेत द्वीप के निकट और एक अदृश्य वाणी ने उन्हें आश्वासन दिया, लेकिन गर्ग संहिता में अलग से सुनाया गया है। उसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु के पास जाते हैं ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु कहते हैं मैं इस बार अवतार नहीं लूंगा, इस बार तो साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही अवतरित होंगे, आओ सब चलते हैं वहां पर उनके धाम। और इस ब्रह्मांड के बाहर भगवान विष्णु लेकर जाते हैं सारे देवी देवताओं को, और वहां पर बड़ी लंबी कथा है कि किस प्रकार से वो एंट्री करते हैं, क्योंकि वहां पर एक सत चंद्र आनना नाम की एक गोपी खड़ी है। वो पूछती ब्रह्मा जी से आप कौन से गांव से आए हो, जरा परिचय तो दो। ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं ब्रह्मा हूं, बोलो जाकर अंदर। तो वो पूछती कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो, तो बोले क्या मेरे अतिरिक्त भी कोई ब्रह्मांड है। तो वो सत चंद्रान नाम बोलती है ये देख रहे हैं कारण समुद्र में कितने सारे बुलबुले की तरह से जितने भी ब्रह्मांड है तैर रहे हैं, तुम पहले ये बताओ। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं तो यही सोचता था मैं ही ब्रह्मा हूं, मेरे अलावा कोई ब्रह्मा है नहीं। तो वो सत चंद्रान नाम बोलती है तुम्हारी स्थिति ऐसी है जैसे जो मूंगे का जो फूल होता है उसके अंदर जो कीड़े होते हैं उनको उसी उसी का पता होता है, बस कीड़े की दुनिया उनका ब्रह्मांड उसी में होता है। इसलिए छोटे से ब्रह्मांड को तुम सोच रहे हो यही बस एक ब्रह्मांड है, इसके अलावा ब्रह्मांड नहीं है। तो बड़े लज्जित हुए ब्रह्मा जी। फिर शिव जी से ब्रह्मा जी पूछते हैं क्या आपको पता है हम कहां से आए हैं। शिव जी बोले मैं भी नहीं जानता, मैं भी यही सोचता था हमारा भी एक ही ब्रह्मांड होगा। फिर भगवान विष्णु बोलते हैं हे देवी मैं कुछ थोड़ा जानता हूं। तो वो पूछती है कहां से आए हो बताइए। भगवान श्री कृष्ण को अंदर जाकर के ये कहिए कि हम उस ब्रह्मांड से आए हैं जिस ब्रह्मांड में आपके वामन अवतार में नाखून से छेद हो गया था, हम उस ब्रह्मांड से आए। तो गोपी कहती है ये कुछ थोड़ा जानता, बाकी सारे बुद्धू आए आपके साथ में। तो फिर जब अंदर जाते हैं तो वहां बड़ी विशेष कथा होती है, चर्चा होती है। वहां पर सब प्लान बनाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं तो नीचे कौन क्या बनेगा। ब्रह्मा जी पूछते हैं कि प्रभु मैं क्या बनूंगा आपकी लीला में। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी लीला में अनिरुद्ध बनोगे, प्रदुम कामदेव वो उनके शरीर में आएंगे। इस तरह से सब आते हैं। तो पार्वती भी उस ग्रुप में गई थी सारे देवी देवताओं के साथ में। पार्वती ने स्पेशली पूछा प्रभु मैं आपकी लीला में क्या बनूंगी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ तुम्हारा भी मेरी लीला में एक कार्य होगा, और वो कार्य ये होगा कि एक बार जब मैं गया था तुम्हारे सामने दर्शन करने के लिए तो शिव जी की उपस्थिति में तुमने मुझे देख करके तुमने आंखें मुझ पर टिका दी थी। तुम्हारी इच्छा है मेरी पत्नी बनने का, इसलिए इस लीला में तुम मेरी पत्नी बनोगी और तुम्हारा नाम होगा जामवंती। तो जो जामवंती आती हैं वो वास्तव में पार्वती देवी है। तो इस प्रकार से ये हमें समझना चाहिए कि जो गणेश जी हैं जो पार्वती हैं ये सब भगवान के ही कैबिनेट मिनिस्ट्री है। जैसे इस भौतिक संसार में भी जो प्रधानमंत्री होता है उसके कितने सारे 50 तो होते होंगे कम से कम, इतने सारे राज्य मंत्री इतना केंद्रीय मंत्री, तो उसी प्रकार से हैं ये सारे। तो महाप्रभु हमें इस लीला से ये सिखा रहे हैं कि हमें जो भी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हो ये हमारा ही विषय तो है। देवी देवताओं को समझना भी हमारा विषय है। मायावादी लोग तो जानते ही नहीं कि देवी देवता है, वो तो सबको एक बोलते हैं, सब एक है, है ना, कोई है नहीं, सब निराकार ब्रह्म है, बस उसमें लीन हो जाना है। देवी देवताओं का सम्मान भी हमें करना होगा क्योंकि हम ही तो मानते हैं कि देवी देवता है और भगवान श्री कृष्ण साक्षात परिपूर्णतम भगवान है। ये मायावादियों का कार्य नहीं है। कर्मी लोग चूंकि मिसगाइडेड हैं इसलिए वो देवताओं की शरण में जाकर उनसे ऐसी ऐसी डिमांड करते हैं। लेकिन हम जानते हैं श्रीमद् भागवतम में शिवजी बोलते हैं कि वास्तव में हे प्रभु आपके भक्तों का मैं लाडला हूं और आपके भक्त ही मेरी सही सही स्थिति जानते हैं, मेरे भक्त मुझे ठीक से नहीं जानते, वो तो कंफ्यूज हो जाते हैं मुझे देख करके। तो वास्तव में ये हमारा विषय। तो श्री कृष्ण जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो देखिए वो हमें बता रहे हैं कि हमें कैसे सम्मान करना है। सारे जितने भी तीर्थ यात्राओं में मंदिर आ रहे हैं सबके यहां कीर्तन कर रहे हैं। आपने एक दृश्य देखा होगा भगवान श्री कृष्ण अपने अंगूठे को चूसते हैं, है ना, वो ये देखते हैं कि कितना प्रेम भक्तों ने अर्पण किया है, कितना प्रेम समर्पण किया है। अपने अंगूठे को इसलिए नहीं चूसते कि उनको कुछ वो कैल्शियम की कमी है, थोड़ी मिट्टी आ जाएगी तो चलो कुछ कैल्शियम की कमी कारण वो चूस रहे, नहीं, वो अपने भक्तों का प्रेम अपने चरणों में जो भक्त अर्पण करता है उसको चूसते। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो चरणों को ही नहीं चूस रहे, वो साक्षात भक्त बनकर आते हैं और वो मंदिर मंदिर जाकर के देखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत में कहते हैं माता सची को हे माता मैं अभी कलयुग में 2 अवतार और लूंगा कीर्तन और आनंद के रूप में। तो ये जो हमें आनंद मिल रहा है भक्ति का, जब आनंद मिलता है कीर्तन जब हम करते हैं, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जानते हैं क्या है, महाप्रभु के अवतार का। आप किसी भी भक्त से पूछिए प्रभु जी आप इस कौन में कैसे जुड़े, वो क्या घटना घटी थी जो अट्रैक्ट हुए, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है वो स्टोरी, और वो महाप्रभु का अवतार है। कितनी सुंदर माध्यम से किसी किसी भक्त को जोड़ते हैं। हमारे द्वारका मंदिर में एक माता जी आती है निशी माता जी, तो वो किसी थ्री व्हीलर को बोलती थी भैया मुझे मंदिर जाना है, तो वो मंदिर में लेकर आता था। बाद में कुछ ऐसी सेटिंग हो गई, भैया मुझे हर संडे जाना होता है तो आप कुछ फिक्स कर लो कि 8:30-8:45 हमारे घर के आगे आया करो और हम मंदिर में चले जाएंगे आपके साथ ही, फिक्स कर लेते हैं अमाउंट भी, क्योंकि हमें तो हर रविवार जाना ही है। ऐसे करते करते एक दिन वो अंदर भी चला गया और कथा भी सुनने लगा, कुछ प्रसाद भी पाया और धीरे धीरे एकदम बेस्ट डिवोटी बन गया। देखिए तो हर भक्त की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कैसे वो आया। ये महाप्रभु की वो लीला है जो अभी भी चल रही है, श्री चैतन्य महाप्रभु के कारण है। इतनी मधुर कथा होती है हर भक्त की, इसलिए कैसे आया मैं इस्कॉन में, वो एक लेख जो आता है भगवत दर्शन में, वो हम पढ़ करके बहुत आनंदित होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु हमें निकालने के लिए आए हैं। अगर हमने श्री चैतन्य महाप्रभु का कैनन ठीक ठीक नहीं माना तो जानते कली पुराण में भविष्यवाणी दी गई है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कौन से पुराण में? कली पुराण तो अखबारों को कहते हैं, ये कली पुराण है सारे, जितने न्यूज़पेपर में सब कली पुराण है, लेकिन कल्कि पुराण एक है। कल्कि पुराण में एक भविष्यवाणी दी गई है जिसमें कहा गया कि कलयुग के पहले 108,000 साल तक भक्ति रहेगी, 10,000 साल तक तो शुद्ध भक्ति रहेगी श्री चैतन्य महाप्रभु की, लेकिन बाद में भी भक्त होंगे। देखिए चार ग्रुप में बांटा है कलयुग को, 4,32,000 साल को 108,000, 108,000 साल तक भक्ति रहेगी, अगले 108,000 साल तक कोई भगवान का नाम लेने वाला नहीं होगा, उसके अगले 108,000 साल तक क्या होगा, सब अवांछित और ना चाहने वाली ऐसी जनरेशन आएंगी, मलेच्छ पैदा होंगे, घर घर में मलेच्छ होंगे, पूरी तरह से अंधेरा छा जाएगा भक्ति का। और उसके आखिरी जो 108,000 साल होंगे, मलेच्छ ऐसे शूद्र और एकदम चंडाल किस्म के लोग होंगे जो एक दूसरे को खा जाएंगे। तब कलयुग के अंत में भगवान श्री कृष्ण आएंगे, किसके रूप में? कल्कि भगवान के रूप में। तो बहुत ही खतरनाक समय आने वाला है आगे, और हमारे पास अभी कुल 9,500 साल बचे हैं। अगर इस जन्म में इच्छाएं पूरी नहीं की तो फिर आगे सोचिए, उससे आगे पूरी नहीं की तो सोचिए फिर क्या होगा। तो इसलिए जो समझदार भक्त होता है, जो शुद्ध भक्त बनने की इच्छा करता है, वो चाहता है बार बार, क्यों, इंद्र तृप्ति तो मैंने हर जन्म में की है, ये जितने भी इंद्र तृप्तियां हमें आकर्षित कर रही है, हर जन्म में हम लाखों करोड़ों बार कर चुके हैं, लेकिन ये जन्म केवल कृष्ण के लिए। प्रभुपाद जी ने यही कहकर सारे भक्तों को आकर्षित किया। तो इस प्रकार से हमें भी इसी संदेश पर चलना है कि इसी जन्म में एक बार पूरी ताकत झोंक करके श्री चैतन्य महाप्रभु की अनुगत होकर, श्री रूप गोस्वामी की अनुगत होकर, श्री प्रभुपाद की अनुगत होकर, गुरु महाराज की अनुगत होकर, वैष्णवों की अनुगत होकर, हम अपराधों से बचते हुए और इसी जीवन में सफलता प्राप्त कर लें। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो आपका स्वागत है। यस प्रभु जी, माइक में।
हरे कृष्णा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपका कथा के लिए। अरे प्रश्न था कि जो आपने कथा बताया कि गणेश जी का जब मुख वैकुंठ चला जाता है और उनको गज का मुख लगाया जाता है, तो उनका वो अपने आप को एक्सपेंड करते हैं वैकुंठ से, नहीं तो वो तो आत्मा
जैसा कि जाती है। यस, जैसा कि भगवान विष्णु ने बताया इस कथा के माध्यम से कि ये जो विशेष घटना है, जैसे सदाशिव का जब प्रकट होता है संसार में, तो ये भी गणेश जी जो गणेश वैकुंठ में निवास करते हैं, ये उनकी कथा सुनाई गई है यहाँ पर। वो गणेश जी नहीं जो भौतिक संसार में हमारे गणेश जी, लेकिन ये गणेश जी हैं जो सदाशिव के लेवल के हैं, इनको विष्णु तत्व हैं ये। तो इनकी जब कथा सुनाई गई है तो ये इनको भगवान विष्णु बोल रहे हैं कि पार्शली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण, इस तरह से। ठीक है, यस प्रभु जी आपका।
सुनते थे पहले भी हम कि जैसे नरसिंह देव से मतलब गणेश जी से बोलते हैं कि सोर्स जो है गणेश जी के विघ्न विनाशक जो कहते हैं, तो नरसिंह देव से कनेक्शन सुनते हैं।
केशव ध्रेता नरहरि रूपा जय जगदीश हरि, सोर्स तो कृष्ण है, कृष्ण से नरसिंह, नरसिंह से ये गणेश जी के इष्ट है वास्तव में। नरसिंह भगवान ना इष्ट होता है ना, जैसे हमारे हम सबके इष्ट है, जैसे गौरांग महाप्रभु को हमें ईष्ट बनाना चाहिए, मानना चाहिए। तो ईष्ट है गणेश जी के नरसिंह भगवान, ठीक है, विघ्न विनाशक, वो भी सर्व विघ्न विनाशक है। यस प्रभु जी,
गणेश जी के बारे में कहीं मैंने पढ़ा था, एक और स्टोरी आती है जिसमें कि शिव जी वध करते हैं उनका, गणेश जी का, तो ये कहाँ तक ऑथराइज है कि पार्वती जी जो है वो अंदर होती हैं तो गणेश जी को जो है द्वारपाल के रूप में रखते हैं और फिर शिव जी जो है वो फिर लड़ाई करते हैं गणेश जी के साथ, फिर उनका सर काटते हैं, तो ये अन्य कल्प की लीला है।
यस, यही मानना चाहिए। शिलजीव गोस्वामी ने हमें यही बताया कि जब भी ऐसा हो कि कुछ कंट्रोवर्सियल नजर आए, षट संदर्भ में जीव गोस्वामी लिखते हैं कि कल्प भेद हो सकता है, दूसरे कल्प की घटना है। जैसे कि गर्ग संहिता में बताया गया है कि जो नलकोर और मणिग्रीव हैं उनको पर्वत मुनि श्राप देते हैं, वही वो क्रीड़ा कर रहे हैं स्त्रियों के साथ में, और जबकि भागवत में हम देखते हैं नारद जी श्राप देते हैं, तो वहां भी वो जल क्रीड़ा कर रहे हैं, उसमें पर्वत मुनि श्राप देते हैं, उसी तरह से वो वृक्ष बनते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है। या रामायण में आता है कि भगवान राम जो है पूरी तरह से सीता के सारे उनकी आर्ग्यूमेंट्स को काट देते हैं कि तुम वनों में नहीं जाओगी, तो सीता देवी हताश हो जाती हैं कि ठीक है नहीं जाऊंगी, मैंने जो कहा भगवान राम ने उसको नेगलेक्ट कर दिया। फिर सीता माता वो ब्रह्मास्त्र छोड़ती हैं जिनके सामने भगवान राम हार जाते हैं। सीता माता पूछती हैं, हे प्रभु क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका राम अवतार हुआ हो और आप वनों में गए हो और सीता आपके साथ ना गई हो? तब भगवान कहते हैं हाँ ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो बोले फिर तो मैं इस अवतार में भी आपके साथ जाऊंगी। तो इस तरह से कल्प भेद कुछ कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा लीला लगभग वही होती है।
जैसे दूसरा था मुझे कि जो वैकुंठ में जो गणेश जी का लोक है और इस भौतिक संसार में गणेश का लोक, तो यहाँ तो भौतिक संसार में मतलब चेंज हो जाता है, बदल जाता है, लेकिन जो वैकुंठ में गणेश जी का लोक है वहाँ तो वो परमानेंट वहाँ पे।
यस परमानेंट, यस यस बिल्कुल। जितने भी देवता हैं 33 हैं जैसे मुख्य देवता, उनके सबके विष्णु रूप में वैकुंठ जगत में
वो हमेशा रहते हैं।
यस,
पृथ्वी का अगर विनाश,
यस वो एज इट इज रहते हैं, वो वैकुंठ के समान है। सदाशिव लोग जो है वैकुंठ है, साकेत धाम है भगवान राम का, वैकुंठ है इस तरह से। तो लेकिन हमें गणेश जी की पूजा नहीं करनी चाहिए कि इस भाव से कि करें चलो गणेश जी की पूजा कर लेते हैं धन भी आ जाएगा और चलो वैकुंठ भी चले जाएंगे। नहीं, प्रभुपाद जी ने ये मना किया, हम केवल श्री कृष्ण के ही से आसक्त होंगे। अगर हमारी आसक्ति होती है तो उसमें थोड़ा कठिनाई और संकट रहता है, हो सकता है कहीं हम उधर ना कन्वर्ट हो जाए, कुछ डिमांड ना करने लग जाए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की, ना धनम ना जनम ना सुंदरम मम जन्मनि जन्मेश्वरे भवताद् भक्ति रहे तू की तोये। इसलिए केवल श्री कृष्ण की पूजा करनी, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद आप सब भक्तों का। हरे कृष्णा ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जगद गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गुरु प्रेमानंदे हरि हरि।